Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
श्वेताश्वतर उपनिषद के अंतर्गत पांचवें अध्याय का पहला मंत्र मंत्र इस प्रकार से है। द्वयक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरम तो विद्या यमृतम तो विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु स्वन्यः यो योनिम योनिमधितिष्ठत्ते को विश्वानिरूपाणि योनिश्च सर्वः ऋषिं प्रसूप्तं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानेर्विवर्ति जायमानं च पश्ये। कई वर्षों से श्वेताश्वतर उपनिषद पर विचार कर रहे हैं। छह अध्याय का ये उपनिषद है। इन छह अध्याय में चार अध्याय का प्रवचन, चौथे अध्याय का प्रवचन पिछले साल पूरा किया था। उसी प्रसंग में इस बार अवशेष दो अध्याय, पांचवा और छठा अध्याय पर प्रवचन आरंभ करते हैं। शंकराचार्य जी इस पंचमें अध्याय का आरंभ करने का जो प्रयोजन है वो बता रहे हैं। चतुर्थाध्यायाशेष अपूर्वार्थम प्रतिपादयितुम पंचमो अध्याय आरभ्यते द्वे अक्षरे इत्यादिना। चतुर्थ अध्याय में जो कुछ कही गई है उसके अलावा कुछ बच गए हैं, उन बचे हुए अवशेष को जो चतुर्थ अध्याय में पूरा नहीं हो पाया, रह गया। जैसे पिछले साल जो पूरा नहीं हुआ रह गया, तो इस साल और इस साल जो पूरा नहीं होगा रह जाएगा और के दूसरे साल, उस साल जो पूरा नहीं होगा रह जाएगा फिर तीसरे साल, क्योंकि सभी पूरा तो तब होगा जब पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति अपरोक्ष अनुभूति होगी। उस पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इस श्रुति के द्वारा जिस तत्व का वर्णन किया गया है उस तत्व का अपरोक्ष हो जाने के बाद फिर कोई अवशेष नहीं रहेगा, तो फिर कोई अध्याय नया आरंभ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कृतकृत्यता है, प्राप्त प्राप्तव्यता है, ज्ञात ज्ञातव्यता है। उस अवस्था में जितने भी ज्ञातव्य हैं वो सब ज्ञात हो जाते हैं, जितने भी प्राप्तव्य हैं वो सब प्राप्त हो जाते हैं, जितने भी कर्तव्य हैं वो सब कृत हो जाते हैं। तब सब अध्याय वहां पूर्ण हो जाते हैं, अन्यथा जब तक उसकी अपरोक्ष अनुभूति उस पूर्ण तत्व के साक्षात्कार नहीं होगा तब तक कुछ न कुछ अवशेष रहेगा। क्योंकि संसार अपूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है। परमात्मा के अलावा संसार, साध्य, साधन, साधक, ये सब संसार के अंग हैं। ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, ये सब संसार के ही अंग हैं। तो उस पूर्ण की प्राप्ति के लिए संसार का साधन रूप में वर्णन कर रहे हैं। तो इस अध्याय का आरंभ, चतुर्थ अध्याय में जो अवशेष रह गए हैं, जो कहनी थी, जो बात, उस बात को कहने के लिए अध्याय, पांचवें अध्याय का आरंभ करते हैं। श्वेताश्वतर ऋषि, इस उपनिषद का नाम श्वेताश्वतर उपनिषद क्यों पड़ा, तो इसकी बात, इसकी चर्चा हमने शुरू में किया होगा। ऋषियों की अपनी अपनी विशेषता होती है, सभी ऋषि एक ही तत्वों के लिए साधना करते हैं, परंतु साधना के काल में उनकी रहनी सहनी, उनका व्यवहार, उनका खान पान अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि साधन अनेक हैं, साध्य एक है। और जिसने जिन साधनों को अपनाकर साधना की है, जैसे कि एक उपनिषद का नाम प्रसिद्ध है, प्रश्नोपनिषद, उसके ऋषि का नाम था पिप्पलाद। उनका नाम क्यों पड़ा पिप्पलाद, क्योंकि साधन में, साधना में वो केवल पिप्पल के फले हुए फल को खाकर वो साधना करते थे। पिप्पलम फलम अत्तीति पिप्पलादः। यूं तो हम लोग भी साधना कर रहे हैं और हम भी साधक हैं, और शायद हम भी पिप्पलाद ही हैं। पिप्पल एक वृक्ष का नाम है, गीता में उसी को अश्वत्थ कहा। ऊर्ध्वमूल मदस्साकम अश्वत्थम प्राहुरभ्यम, भाषा में पिप्पल कहते हैं तो संस्कृत में उसी को अश्वत्थ कहते हैं। और हम संसार में रहते हैं और ये सारा संसार एक पिप्पल का वृक्ष है, और इसी में रहकर हम नाना प्रकार के कर्म करते हैं और उन्हीं कर्म के फलों को भोगते हैं। आप यहां जो कुछ भी भोग रहे हैं वे सब पिप्पल के फल हैं। संसार रूपी वृक्ष में किए हुए कर्म का जो फल है वही पिप्पल का फल है, और उसी को भोगते हुए हम भी साधना कर रहे हैं। इस अर्थ में तो हम भी पिप्पलाद हैं। इसी तरह यहां एक ऋषि का एक विशेष नाम आया, श्वेताश्वतर। इन ऋषि के पास सफेद घोड़ा रहता था, हमेशा वो सफेद घोड़े में ही रहकर साधना करते थे, घोड़े में ही चलते थे, घोड़े में ही घूमते थे। उनके पास वो घोड़ा, सफेद घोड़ा हमेशा रहता था। सफेद घोड़ा का अर्थ क्या है? आप सामान्य अर्थ में तो कोई काला घोड़ा आपने देखा होगा, कोई सफेद देखा होगा, कोई लाल देखे होंगे, कोई चितकबरे देखे होंगे, और ये लाक्षणिक अर्थ हैं सब। सफेद को शुद्ध कहा जाता है, काले को मलिनता कहा जाता है, सफेद शुद्धता का प्रतीक है। इंद्रियों को अश्व कहा जाता है, इसका अर्थ ये हुआ, लक्षणिक अर्थ ये हुआ, जिसकी इंद्रियां शुद्ध हैं। क्योंकि इंद्रियों की शुद्धता भी आपकी साधना में बल मिलता है, इंद्रियों की अशुद्धता ही आपकी साधना, आपके विचार में बाधा है, विघ्न है। इंद्रियाणि हयान्याहुर विषयांश तेषु गोचरा, पट उपनिषद में इंद्रियों को घोड़ा कहा है, और कठोपनिषद में ये कहा गया है यमराज ने कि जिसके घोड़े सदस्वा इव सारथे, जिसके घोड़े बिल्कुल सधे हुए हैं, उन सधे हुए घोड़े को यानी सधे हुए इंद्रियों को ही यहां श्वेताश्व इस पद के द्वारा उपलक्षित किया गया है। हमारे घोड़े इतनी सधे नहीं है, भले बूढ़े हो गए हैं, भले जीर्ण हो गए हैं, लेकिन अभी भी सधे नहीं है, हमारी इच्छा के अनुसार गतिमान नहीं है, हमारे संकल्प के अनुसार क्रियाशील नहीं है। सधे हुए घोड़े का तो यह अर्थ होता है कि मालिक जो संकल्प करे, संकल्प को ही वह समझकर प्रवृत्त हो, उसकी इशारा, उसका संकल्प, उसका संकेत उसके लिए पर्याप्त होता था। तो इस सधे हुए घोड़े अर्थात परिमार्जित और शुद्ध इंद्रियां, इंद्रियों की वृत्तियां, जिसकी इंद्रियां हमेशा शुद्ध हैं, वही श्वेताश्वता ऋषि है। तो उन्होंने इन मंत्रों को देखा, इसलिए इस उपनिषद का नाम ही रखा गया है श्वेताश्वतर उपनिषद। ऋषि शब्द का अर्थ होता है मंत्र दृष्टा। सामवेद में जिन मंत्रों को उन्होंने इन उपनिषद इस उपनिषद में जितने मंत्र हैं उनको उन ऋषि ने देखा, क्योंकि ये मंत्र किसी की लिखी हुई नहीं है, ये अपौरुषेय हैं, परंतु इन मंत्रों को समाधि में देखा है, हाथ से लिखा नहीं है, समाधि में देखा है। अब भी तो कई बार स्वप्न में देखते हो, कई बार ऐसे स्वप्न आते हैं कि अद्भुत अद्भुत स्वप्न आते हैं, आप अपने स्वप्न में ही जो कुछ देख रहे हो उस सब को यदि आप व्यक्त कर लो, लिख लो, तो एक दिन के स्वप्न एक पुस्तक तैयार हो जाए, और वो स्वप्न में दिखे हुए सब चीज को यदि आप लिखते जाओ, एक महीने के अंदर के स्वप्न में दिखे हुए सब दृश्यों को, सब भावों को यदि आप पुस्तक में कॉपी के रूप में उतार लो, तो उस पुस्तक को पढ़ते समय लगेगा कि तुम पागल हो, क्योंकि कल के स्वप्न का आज का कोई संबंध नहीं होगा, आज के ही स्वप्न का पहले स्वप्न और दूसरे स्वप्न का कोई संबंध नहीं होगा, बड़ा उटपटांग हो जाएगी वो, तो विसंगति, इतनी विसंगति हो जाएगी कि तो जागृत अवस्था में भले ही एक रूपता हो और आपकी लिखी हुई पुस्तक पढ़ने लायक हो, स्वप्न के दृश्यों को और भावनाओं को विचारों को यदि आप किताब पुस्तक के रूप में व्यक्त करने लग जाओ तो इतनी असंगति हो जाएगी। इसी तरह वैदिक ऋषियों ने इन सारे वेद मंत्र जो अव्यक्त रूप में थे उनको समाधि में देखकर व्यक्त किया। तो इसलिए श्वेताश्वतर ऋषि ने इन मंत्रों को देखा, इसलिए इस उपनिषद का नाम श्वेताश्वतर उपनिषद हुआ। इस उपनिषद के इस अध्याय का पदार्थ शोधन प्रयोजन है, पदार्थ शोधन। शोधन शब्द का दो अर्थ होता है, एक होता है खोजना और दूसरा होता है परिमार्जित करना। एक अर्थ होता है शोधन का अर्थ खोजना, खोजी करना, दूसरा अर्थ होता है परिमार्जित करना। जैसे पीएचडी करने वाले, उसको जो पीएचडी करते हैं उसको संस्कृत भाषा में शोध पत्र कहते हैं। अब जिस डिग्री को पीएचडी कहते हो उसको संस्कृत भाषा में शोध पत्र कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? खोजी। उस विषय से संबंधित तमाम पद और पदार्थ का खोजी करना, इसीलिए शोधन यानी खोजी करना। और कई बार आयुर्वेदिक औषधियों का शोधन किया जाता है। जहर जैसे विषालु पदार्थों को भी शोधन करके वह शरीर के उपयोगी बनाया जाता है। वहां शुद्धिकरण शोधन है, वहां खोजी अर्थ न होकर शोधन अर्थ होता है। यहां जिसको पदार्थ शोधन कहा जा रहा है वो उसका अर्थ पदार्थों को शोधन यानी शुद्धिकरण नहीं है, पदार्थों को खोजना। पहले वाक्य समझ लो, पद और अर्थ दुईटा मिलाकर पदार्थ हुआ। पद दिख रहा है, अर्थ नहीं दिख रहा हो तो क्या करोगे? अर्थ खोजना पड़ेगा। इस पद में कौन सा अर्थ छुपा हुआ है, इस पद के द्वारा जो बताया जा रहा है अर्थ वो कहां छुपा है, वो क्या चीज है? इसीलिए कहीं भी वाक्य ज्ञान के लिए पहले पद ज्ञान होना चाहिए, वाक्य ज्ञान के लिए पद ज्ञान होना चाहिए। पद ज्ञान का प्रयोजन होगा पदार्थ ज्ञान, क्योंकि केवल पद ज्ञान से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। संगीत आदि में पद ज्ञान से प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, लेकिन अन्यत्र पद ज्ञान से प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। जैसे कहीं शास्त्रीय संगीत चल रहा हो, वहां उस संगीतज्ञ ने जो भी पद प्रयोग किया गया है वो संगीत के माध्यम से इतने सुमधुर है कि आपको वो सुनते सुनते बड़ा आनंद आएगा। उसके लिए उस पदार्थ के ज्ञान होने जरूरी नहीं है, लेकिन जहां शोधन की बात आती है वहां पद श्रवण करने मात्र से प्रयोजन नहीं होगा, वहां पदार्थ के शोधन यानी खोजी करना पड़ेगा, पद का अर्थ खोजना होगा। जैसे किसी ने कह दिया, अरे भाई तुम तो ब्राह्मण हो, ये वाक्य प्रयोग किया किसी ने पद, तो इसमें तुम इस पद का अर्थ बोध होना चाहिए, तुम का मतलब क्या हो रहा है, किसको कह रहा है। तुम ये जो पद उच्चारण किया सामने वाले ने, तुम पद का अर्थ किताब है कि तुम पद का अर्थ पुस्तक है कि तुम पद का अर्थ क्या है? तो जब तक पद का अर्थ बोध नहीं हो रहा है तब तक वाक्य ज्ञान नहीं हो पाएगा। एक वाक्य में अनेक पद प्रयोग होते हैं, कि पद का पहले अर्थ ज्ञान हो, अर्थ खोजी हो, फिर उस एक पद से दूसरे पद, दूसरे पद के तीसरे पद, पूरे वाक्य की संगति निकालने के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है, एक तो पद का अर्थ ज्ञान, दूसरा उस एक अर्थ से दूसरे अर्थ का संबंध के लिए कारक ज्ञान। व्याकरण ज्ञान, यदि कारक का ज्ञान नहीं है तो वाक्यार्थ स्पष्ट नहीं होगा। केवल पदार्थ ज्ञान है, कारक का ज्ञान नहीं है तो वाक्यार्थ स्पष्ट नहीं होगा। जैसे किसी ने कह दिया कि तुम पुस्तक ले आओ, तुम पुस्तक ले आओ, ये वाक्य उसने सुना, तुम पद का अर्थ उसको समझ में आया कि नहीं आया? तुम पद का अर्थ जिसको लक्ष्य करके सुनाया जा रहा है वो उसको ये बोध होना चाहिए, ये तुम पद का अर्थ मैं हूं, उसको ये बोध होना चाहिए ना। पुस्तक पद का अर्थ सुना उसने कान में, पुस्तक का ये पद तो सुन लिया उसने, लेकिन पुस्तक क्या होता है भाई? तो उसका अर्थ बोध होना चाहिए तुम्हें, पुस्तक शब्द का अर्थ, ये पुस्तक जो लोक में प्रसिद्ध है, पुस्तक आपको पता ही है, आप सभी को पता है पुस्तक पद का अर्थ, यहां शोधन करने की आवश्यकता नहीं है। तुम पुस्तक ले आओ, ये वाक्य तो सभी को स्पष्ट है, इसलिए इस वाक्य के अर्थों को आप और हमको यहां खोजी करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्पष्ट हो गया, इसलिए क्या खोजना है? जिस पद का अर्थ स्पष्ट हो रहा है उसकी तो खोजी करने की आवश्यकता नहीं है। तुम माने वह सुनने वाला व्यक्ति, पुस्तक माने जो कहीं रखा हुआ वस्तु, ले आओ ये क्या है? एक कारक है, एक क्रिया को बोध कराने वाला वाक्य है, पद है, ये वस्तु को बोध कराने वाले पद नहीं है, क्रिया को बोध कराने वाले पद हैं। पुस्तक वस्तु को पद बोध कराने वाला पद है, तुम व्यक्ति को बोध कराने वाला पद है, पुस्तक वस्तु को बोध कराने वाला पद है, ले आओ ये क्रिया को बोध कराने वाले पद हैं। तब ये तीनों का क्रिया के साथ संबंध जोड़कर पुस्तक ले आओ, उसने जो कहा उसको अर्थबोध हो गया, जाएगा और पुस्तक लेके आएगा। व्यक्ति वस्तु को क्रिया के सहित, क्रिया के द्वारा लेकर आएगा। अब जहां ये सब बात आप और हम स्वतः जानते हैं, इन पदों का अर्थ जो स्वतः जानते हैं, तभी हमारा व्यवहार चल रहा है। अब जब कहीं जहां कहीं भी कोई वाक्य ऐसा प्रयोग कर दिया जाता है कि तत्त्वमसि जैसे महावाक्य प्रयोग कर दिया, तत्त्वमसि, और ये तीन पद प्रयोग हुआ इस वाक्य में, जैसे पहले के वाक्य में पुस्तक ले आओ, तुम पुस्तक ले आओ, ये तीन पद हो गए। ले शब्द का अर्थ ग्रहण हो गया, आओ शब्द का अर्थ गमन हुआ, देख लो। पुस्तक ले, ले से क्या अर्थबोध हुआ? यदि आओ ये प्रयोग नहीं किया जाए, पुस्तक ले इसका अर्थ क्या हुआ? पुस्तक ग्रहण कर, है ना? तो ले पद का अर्थ क्या हुआ? ग्रहण, हाथ की क्रिया का विषय। आओ पद का अर्थ क्या हुआ? क्रिया, ये पांव का क्रिया। ले पद का अर्थ हो गया हाथ की क्रिया, आओ पद का अर्थ हो गया पांव की क्रिया, गमन करो। ले का अर्थ हो गया हाथ की क्रिया, ग्रहण करो। आओ पद का अर्थ हो गया पांव की क्रिया, गमन करो, ले आओ। पुस्तक वस्तु हो गया, तुम व्यक्ति हो गया, कि पदार्थ हो गया कि नहीं? तो ये तो आप जन्म से ही व्यवहार में पदार्थ का, पद का अर्थ शोधन किए हुए हो, इसलिए इसके लिए प्रेमपुरी आश्रम की आवश्यकता नहीं है। जो प्रचलित पद के अर्थ आप लोगों को ग्रहण हो चुका है, तो वहां शोधन करने की जरूरत, खोजी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पदार्थ शोधन वहां होता है, खोजी वहां होती है जहां सामान्य व्यवहार आदि क्रियाओं के द्वारा जिन पदों का अर्थ अनुसंधान न हो रहा हो तो वहां फिर विशेष करके अर्थ अनुसंधान करना पड़ता है। तत्त्वमसि, तत् पद का अर्थ क्या है, तम का अर्थ क्या है, असी पद का अर्थ क्या है। तब इन पद के अर्थ का अनुसंधान, तत्पद का अर्थ क्या है। सामान्य तत्पद का अर्थ तो परोक्ष है, तत् माने परोक्ष, तम माने अपरोक्ष। जैसे कि तू ये पद का अर्थ हमेशा अपरोक्ष होता है, किसी को भी कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि तू, तुरंत ये पद सुन के ही सुनने वाला उसको जो तू इस पद को, इस पद का जो अर्थ है वो अर्थ उसको खुद अपरोक्ष हो जाएगा। वहीं पर उसने तू शब्द प्रयोग किया और उसने सुन लिया, तू शब्द सुन लिया उसका अर्थ वो तुरंत उसके सामने अपरोक्ष हो जाएगा, इस तू पद का अर्थ मैं है ना, तुरंत उसको अवबोध हो जाएगा, उसमें कोई शंका संशय होगा ही नहीं।